हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनंत ने जैसे ही पोजीशन चेंज करने के लिए राविया की खुली कमर पर हाथ रखा, वो चिहुकते हुए बोली, नहीं, मैं ये स्टेप नहीं करने वाली हूँ, इसमें बहुत अजीब लग रहा है। अनाही ने कन्फ्यूज होते हुए राविया की तरफ देखा और फिर आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम दोनों की तो लव मैरिज हुई है और तुम ये एक छोटा सा सिंपल सा डांस स्टेप नहीं कर सकती हो? सीरियसली, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने भी कंफर्टेबल नहीं हो? ये सुनकर राविया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे डर लग रहा है, कहीं अनंत मुझे गिरा तो नहीं देंगे। अनाही ने हल्के गुस्से में कहा, अपने पति पर विश्वास रखो, कितना हटाकटा लगता है, तुम जैसी छुई मुई लड़की को भी नहीं संभाल पाएगा क्या? इस बार अगर किसी ने बीच में बकवास की तो सच में उसे तगड़ी वाली डांट सुनाऊंगी। अभी तक बहुत नरमी से पेश आ रही हूँ मैं तुम लोगों के साथ। सब ने एक दूसरे को देखा तो वहीं रोहान अपनी हार्टबीट संभालने की कोशिश कर रहा था और ठीक वक्त पर ही राविया ने सबको रोक दिया था, वरना बेचारा रोहान वापस उसी मोमेंट में जाने वाला था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। एक बार फिर डांस शुरू से स्टार्ट हो चुका था। रोहान ने धीरे से कहा, मैडम जी, आप क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं? प्लीज, अगर राविया भी उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। अनाही ने रोहान को आंख से दिखाते हुए दांत पीसकर कहा, मैंने कहा ना, कोई बकवास नहीं करेगा। बेचारे रोहान की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने फिर से अनाही की मखमली कमर को अपनी कांच की उंगलियों से छुआ और फिर घूमते हुए मिडिल पोजीशन में आ गए। साथ में ढोलीरा सॉन्ग प्ले हो रहा था। अनंत ने राविया के करीब होते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसा कर कहा, देखो, अनाही भाभी को अभी तक हमारे रिश्ते की सच्चाई पता नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, ज्यादा नहीं छूने वाला हूँ, और डांस करते वक्त इधर की साइड दुपट्टा आ जाएगा, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, डोंट वरी, और गिरने का ख्याल तो तुम भूल भी जाओ, खुद को बाहुबली समझती हो क्या जो मेरे हाथों से गिर जाओगे? राविया ने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से डांस करने लगी। वैसे राविया को डांस में इंटरेस्ट था तो उसे डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे बस अनंत के बार बार छूने से दिक्कत थी। जैसे तैसे करके उनकी डांस प्रैक्टिस आखिरकार खत्म हो चुकी थी। शाम का वक्त था जब सारे मोहल्ले की औरतें निमानी हाउस के गार्डन एरिया में आई थीं। माधवी, राधिका और निवेदिता सबके साथ मिलकर बातें कर रही थीं। स्टेज के सामने बहुत सारी कुर्सियां लगाई हुई थीं जिस पर वे औरतें बैठी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। हर कोई बस एक दूसरे की तारीफ करने में लगा था। लोगों ने गुजराती ड्रेस पहनी थी जो बेहद खूबसूरत थी। एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां डांडिया खेलने आई थीं। माधवी आगे बढ़कर बस सबको यही कह रही थी कि आइडिया उसी का था, वही इतनी बड़ी दिलदार है जो पूरे मोहल्ले की गरबा नाइट एक साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। पर असलियत कुछ और थी, क्योंकि ये सब तो अनाही ने किया था। निवेदिता ये देखकर काफी हैरान हुई थी कि माधवी ऐसे क्यों बोल रही थी, पर माधवी उससे बड़ी थी उम्र में भी और कद में भी, इसलिए उसने माधवी को सबके सामने इस बात के लिए टोकना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चुपचाप मुस्कुराते हुए माधवी की हाँ में हाँ मिला रही थी। थोड़ी देर बाद गरबा नाइट स्टार्ट हुई, जिसके साथ ही वहाँ गुजराती गाने बजने लगे। थोड़ी देर बाद उन तीनों कपल की परफॉर्मेंस भी होने वाली थी। अनाही और रोहान अपने कमरे में थे, बाकी दोनों जोड़े तो कप के गार्डन एरिया में आ चुके थे। अनाही ने जल्दी से अपनी पीठ रोहान की तरफ करते हुए कहा, रोहान जी, जल्दी कीजिए कि डोरियां बंद ही नहीं रही हैं। इन लोगों को एकदम सही फिटिंग करवानी चाहिए थी, ये मुझे थोड़ा सा टाइट है और मुझे लूज फिटिंग पहनने की आदत है। रोहान वो डोरियां बांध रहा था। ऐसा लग रहा था अनाही से ज्यादा अनकंफर्टेबल तो रोहान था, क्योंकि उसके सामने अनाही की गोरी पीठ पर चमकता काला तिल उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। थोड़ी देर बाद जब अनाही को लगा कि रोहान के हाथ उसकी पीठ पर नहीं है, तो उसने जल्दी से कहा, भगवान जी, क्या आपने डोरियां बांध दी हैं? रोहान ने तेजी से कहा, हाँ मैडम जी, हो गया है, अब हम चल सकते हैं। इतना बोलकर रोहान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। इसके साथ ही अनाही ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे दोनों भी गार्डन एरिया में आ गए। वे आने के बाद लोगों ने जिस गाने पर डांस प्रिपेयर किया था वो गाना बजने लगा और वे तीनों एक साथ डांस करने लगे। सब लोग बहुत हैरान थे कि निमानी परिवार की तीनों बहुएं इतना अच्छा डांस कर सकती हैं और साथ में वे बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थीं। पर सब लोग ये बातें जरूर बना रहे थे कि आखिर वेदांत की पत्नी सबसे छोटी क्यों लग रही है? क्या वेदांत की शादी एक कम उम्र की लड़की से हुई है? और अगर ऐसा है तो क्या वो लव मैरिज थी? इन सब के जवाब देते देते निवेदिता थक चुकी थी। उसने बहाना बनाया था कि वेदांत की कुंडली विहा के साथ मैच हो रही थी, तो वहीं रूहान की अनाही के साथ। पर फिर भी औरतों का मुंह बंद नहीं हुआ था। वहीं स्टेज पर रूहान और राविया के अनकंफर्टेबल होने की वजह से अनाही को काफी गुस्सा आ रहा था, पर अफसोस वो स्टेज पर उन दोनों को गुस्सा नहीं दिखा सकती थी। वहीं विहा और वेदांत तो एक दूसरे में ही खोए हुए थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनका डांस अच्छा हो रहा है या बुरा, क्योंकि वेदांत की नज़रें विहा के छोटे से चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। वो बार बार उसके होठों को देख रहा था, जिन पर फिलहाल एक प्यारी सी स्माइल सजी हुई थी, क्योंकि आज सब ने उसकी भर भर के तारीफ जो की थी कि वो यहाँ सबसे खूबसूरत लग रही है। विहा ने धीरे से कहा, वेदांत, आज तो काकिसा और ताईजी ने भी कहा कि मैं सबसे सुंदर लग रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं सच में सुंदर लग रही हूँ, वरना मैं कहाँ आपकी उस सेक्रेटरी जूली से भी इनसिक्योर हो रही थी। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ। ये सुनकर वेदांत को हंसी आ गई। विहा का बचपन जाने का नाम नहीं ले रहा था। हर सिचुएशन में उसके पास एक ऐसी बात जरूर होती थी जिससे वेदांत के होठों पर ना चाहते हुए भी बड़ी सी स्माइल आ जाती। थोड़ी देर बाद उनका डांस खत्म हुआ और वे तीनों स्टेज से नीचे आए। इसके साथ ही सब लोगों ने उनके लिए जोरों से तालियां बजाईं। स्टेज से नीचे आते ही अनाही रूहान का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गई और फिर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, रूहान जी, आपको कितना समझाया था, उसके बाद भी डांस करते वक्त आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या मेरे साथ रहना इतना ज्यादा मुश्किल है? रूहान ने जल्दी से कहा, आई एम रियली सॉरी मैडम जी, आपके साथ रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इतना बोलने के साथ ही उसने जल्दी से अपने दोनों कान पकड़ लिए, जिसे देखकर अनाही ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर उसके हाथ कान से हटाते हुए बोली, ठीक है, चलिए, आप मेरी वजह से अपना मूड मत खराब करिए, हम खाना खा लेते हैं। इतना बोलकर उसने आसपास नजरें घुमाई तो उसे राविया और अनंत भी नजर आए, जिन्हें अनाही ने हाथ दिखाते हुए अपने पास बुलाया। उन दोनों के पास आते ही अनाही ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा कि वेदांत जी और विहा कहाँ रह गए? स्टेज से तो हमारे साथ ही नीचे आए थे, उसके बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अनाही ने गहरी सांस छोड़ी और फिर अपना फोन निकालकर विहा का नंबर डायल किया और साथ ही राविया से बोली, चलो उस टेबल पर हमारे लिए खाना लगा लो, मैं बुलाती हूँ उसको कॉल करके। राविया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसी के साथ अनंत और रूहान भी डाइनिंग टेबल के पास चले गए। उस गार्डन में करीब 20 टेबल राउंड शेप की थीं, जिनके आसपास चेयर रखी हुई थीं, जिन पर कुछ लोग पहले से बैठे थे। रूहान और अनंत दोनों ने ही राविया को खाना लगवाने में मदद की, जिसे देखकर राविया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इस घर के मर्द बहुत अच्छे हैं, वरना सबको ये काम तो अपनी बिरादरी का लगता ही नहीं है। अनंत ने एक प्राउड के साथ अपने कुर्ते की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स वी आर गुड बॉयज, हम बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मैं मिल गया। हर किसी के पास अनंत निभाने की पत्नी बनने वाला अच्छा नसीब कहाँ होता है। राविया ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान हो? मैंने तुम्हारे साथ साथ रूहान की भी तारीफ की है, उसके मुंह से तो कुछ नहीं निकला।